देखते हैं हम आज आयत नंबर 121 से इंशाल्लाह ताला। एक तो यहां से मैंने आपको बताया था कि शुरू हो रही हैं आयत जंगे उहद के बारे में, उसके ऊपर अब डिस्कशन होगी और इससे मुतल्लिक आगे तकरीबन 60 तक आयत इसी पे आएंगी, आखिर की बस आयत रह जाएंगी फिर, जो तकरीबन एक समरी होगी सारी बात की। तो ये आयात अब हम मुसलसल देखेंगे, जिसका एक तरह से खुलासा इन चंद आयात में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनमें आ रहा है। और इनमें कुछ दो चार आयतें बदर की याद भी कराई जाएगी, तो बदर के बारे में भी आएंगी। अब थोड़ा सा पहले इसका तनाजुर देख लेते हैं कि उहद में हुआ क्या था। वैसे तो आप लोग सब उहद की सारी कहानी को कई दफ़ा सुन चुके होंगे, लेकिन जहन में एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए। रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में बदर के मुकाम पे कुरैशी फौज और मुसलमानों के दरमियान जंग हुई, जिसमें कुफार के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए थे और इतने ही कैदी बनाए गए थे। और इस शिकस्त से असल में अल्लाह ताला के अजाब का समझ लें कि उनके लिए पहली किस्त थी, और कुरैश का जज्बा इंतकाम भड़क उठा था। जो सरदार मारे गए थे उनके अजीज़ो कारिब ने तमाम अरब को गैरत दिलाई और ये मुआहिदा किया कि जब तक हम इसका बदला मुसलमानों से नहीं ले लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वो जो काफिला अबू सुफियान लेकर आया था ना, बच बचा के जो पहुंचा था, उसका जितना माल था उन्होंने कहा ये सब हम डोनेट करते हैं नेक्स्ट जंग के लिए। 1 साल में उन्होंने तैयारी की और 3 हिजरी में कुरैश के साथ बहुत से दूसरे कबाइल भी मदीना पर चढ़ाई करने के लिए निकल खड़े हुए। हत्ता के औरतें भी साथ आईं ताकि मौका आने पे आदमियों को गैरत दिलाएं कि तुमने वापस नहीं जाना, अगर तुम वापस गए तो ये हमें लौंडियां बना लेंगे, तो आदमियों को गैरत आएगी। तो ये 3,000 का लश्कर असलहा समेत पूरी तरह तैयार होके मदीना से तकरीबन 3 मील के फासले पर ओहद है। जो लोग गए हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, मदीना से आप निकलते हैं तो थोड़ी दूर में ही ओहद आ जाता। तो वहां तक वो पहुंच गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल चुकी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से मशवरा किया कि क्या किया जाए, आप किस तरह जंग लड़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मुबारक ये थी कि मदीना के अंदर रह के मुकाबला किया जाए, और अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था उसकी भी राय यही थी इत्तेफाक से। देखें, इसे पता चलता है कि बाज दफा दो लोग एक जैसी बात कर रहे होते हैं मगर नीयतों का फर्क जो होता है वो डिफरेंस मेक कर देता है। वो तो मुनाफिकों का सरदार था, वो अपनी बुजदिली की वजह से कह रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगी स्ट्रेटजी की वजह से कह रहे थे। लेकिन कुछ जोशीले नौजवान थे जो बदर में हिस्सा नहीं ले सके थे, तो वो कहने लगे कि नहीं, हम बाहर निकल के लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा कि हमें शहादत मिलेगी, तो यही तो हम चाहते हैं। तो हाँ, हमारा दुश्मन को पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर बुजदिली नहीं, कमजोरी नहीं है, तो कसरत राय इसी तरफ हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मान ली, हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं चाहते थे कि हम बाहर निकल के लड़ें। और कभी कभी लीडर को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पे मशवरे की अहमियत भी पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया, दूसरा उनके मशवरे को अहमियत भी थी और उनके मशवरे को मान लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान में तशरीफ लेके गए, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा था, ज़ीरा पहन के बाहर आए। तो उस वक्त बाज लोगों को फिर ख्याल आया कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के खिलाफ किया है, तो ये गलत हो गया हमसे। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अगर आप चाहते हैं कि अंदर ही रह के लड़ें तो हम इस पे भी तैयार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि एक पैगंबर को ये जेब नहीं देता कि जब वो जीरा पहन ले और हथियार लगा दे फिर बगैर किताल किए हुए इसको उतारे। यानी अब एक दफा फैसला हो गया तो अब नबी फैसले फिर उसके बाद ये नहीं कि उसके बाद मुतजलजल होते रहे, अच्छा अब ये करें कि ये करें, पहले कुछ कर लिया फिर उसके बाद चेंज कर रहे हैं फिर कुछ और नहीं, फिर जब एक दफा फैसला हो गया तो बस हो गया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर तशरीफ ले गए, तकरीबन 1,000 आदमी आपके साथ थे, तो उस वक्त ये जो रईसुल मुनाफिकीन था अब्दुल्ला बिन उबई, वो पहले साथ आया फिर अपने 300 साथियों को लेके रास्ते से ये कहता हुआ वापस हो गया कि जब मेरा मशवरा ही नहीं माना तो मैं क्यों लड़ने के लिए जाऊं, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो हम तो खामखा अपने आप को हलाकत में डालेंगे इस तरह। तो अब इसके अंदर ज्यादातर तो मुनाफिकीन ही थे जो उसके साथ 300 में चले गए, मगर बाज मुसलमान भी उसके फरेब में आ गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ 700 लोगों की लेके मैदान जंग में पहुंच गए। और सोचिए आप जरा कि उस वक्त क्या हाल हुआ होगा जब आपके यानी 30% लोग तो वापस चले गए, 700 रह गए हैं सिर्फ। और ऑलरेडी मुसलमानों को एक एक बंदे की जरूरत होती थी क्योंकि दूसरी तरफ 3,000 का लश्कर आ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद में पहुंचे। कहा जाता है कि वो लोग पहले पहुंच गए हुए थे। अगर आप लोगों ने उहद पहाड़ देखा हुआ हो तो यानी मदीना से जाएं तो आप इस तरह से समझ लें कि पहले कुरैश का लश्कर आता था, मुसलमान पीछे से होके गए और उहद को अपनी बैक पे लिया। तो अब आप अगर मदीना से जाएं तो पहले कुरैश का लश्कर, फिर मुसलमानों का लश्कर, फिर पीछे उहद पहाड़। और आपको पता है उहद पहाड़ काफी ह्यूज पहाड़ है, और इसकी वजह यही थी कि अगर मुसलमानों को पीछे होना पड़े तो उनके पीछे उहद पहाड़ हो, और अगर इस तरफ ही रहते मदीना की तरफ तो फिर अगर पीछे होते तो पीछे मदीना था और दुश्मन पीछा करते हुए मदीना तक पहुंच जाता। तो एनी हाउ नबी अलैहिस्सलाम वहां तक पहुंचे, और आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह सफबंदी की गई, कि यानी किस तरह से मुसलमानों को की प्लेसमेंट कहाँ थी, क्योंकि आगे जाके फिर आपको पता चलेगा कि मुसलमान जब पीछे को हुए तो फिर उहद के ऊपर चढ़ गए थे। तो यहाँ पे आपने सफ़ें बांधी मुसलमानों की। हजरत मुसब बिन उमैर को झंडा दिया और हजरत हमजा को आपने फौज की कमान, जो जिरा पोश थे उनकी कमान दी। और एक साइड से ये डर था कि दुश्मन इधर से ना आ जाए, इसलिए 50 लोग जो तीर अंदाज थे उनका दस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पे मुतय्यन किया, जो छोटी सी एक पहाड़ी जबले रमाद आप आज उसको कहते हैं, तो वहां पे उनकी प्लेसमेंट की और उनको हुक्म दिया कि आपने यहां से नहीं हिलना, चाहे दुश्मन हमारी तिक्का बोटी कर दे, आपने नहीं यहां से निकलना, हमें शिकस्त हो जाए, आपने यहां से हिलना नहीं है। और अब्दुल्ला बिन जुबैर को इन तीरंदाजों का अमीर मुकरर किया। अच्छा, अब ये बिल्कुल यानी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से एक सफाराई हुई है, एक बड़े डिसिप्लिन के साथ ये सारा काम हुआ। और ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफबंदी की थी, ये भी आज जो वॉर स्ट्रेटजीज जो मुतय्यन करते हैं, जो कहते हैं कि वॉर की भी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो वो भी हैरान होते हैं कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये सारा इस तरह से उनको प्लेसमेंट उनकी की कि जो एक जबरदस्त वॉर की स्ट्रेटजी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त दो जिरें पहनी हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखने की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जंग शुरू हुई तो शुरू में मुसलमानों का पलड़ा भारी था, यहाँ तक कि मुकाबले की फौज में वो बिल्कुल पसपाई हो गई। मुसलमान यही समझे कि फतह हो गई क्योंकि वो भाग निकले, दुश्मन भाग गया वहां से। और उधर जो तीर अंदाज थे उन्होंने देखा कि मुसलमान तो इस वक्त माले गनीमत जमा कर रहे हैं मैदाने जंग से, तो उन्होंने कहा कि जो जब ये खत्म ही हो गई है जंग और हम जीत ही गए हैं, तो अब हमें चलना चाहिए, हम भी जाके माले गनीमत जमा करें। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर जो इनके अमीर थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद दिलाया कि नहीं, आपने हमें रोका है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो तो रोका था इसलिए कि अगर शिकस्त हो गई तो फिर हमें चाहे जो भी हमारे साथ हो जाए, आपने नहीं यहां से हिलना, तो शिकस्त के लिए था, इस वक्त तो फतह हो गई है, तो देखो जब जंग ही ओवर हो गई है तो यहाँ पे खड़े रहने का क्या सवाल है, तो चलो हम चलते हैं। तो बाज जगह पे आते 35 लोग, बाज जगह पे 40 लोग जो हैं वो उतर गए वहां से, और वो माले गनीमत के चक्कर में, और सिर्फ 10 लोग ऊपर रह गए थे। उस वक्त जब काफिर भाग रहे थे, हजरत खालिद बिन वलीद ने एक दफा मुड़ के देखा और उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर तो चंद एक लोग रह गए, ये तो मैदान खाली है। तो वो उस तरफ से चक्कर लगा के, उनके पास 200 सवार थे जिनको वो लीड कर रहे थे घुड़सवार, तो उन्होंने पहाड़ी का चक्कर काट के और पीछे से आके हमला किया। इन्होंने रोकने की कोशिश की अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथियों ने, लेकिन वो नहीं कर सके कि वो तो सिर्फ 10 लोग रह गए थे। तो अब जब ये लोग पलट के आए और इन्होंने हमला किया, जो वो दुश्मन भाग रहा था वो भी, फिर उन्होंने भी देखा कि अच्छा फिर ये तो हमारा पलड़ा भारी हो गया, वो भी वापस आ गए। इस तरह लड़ाई का पूरा सीन बदल गया और मुसलमान जो फतह हासिल कर चुके थे, इस वक्त एक अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल को देखकर एक पैनिक मच गई, एक भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई और बहुत सारे मुसलमान उस वक्त भागने लगे। बाद सहाबा कुछ मैदान जंग में डटे भी रहे, मगर बहुत सारे भागे, क्योंकि एकदम पैनिक हो जाए इंसान तो फिर कैसे रिएक्शन होता है ना। जिधर जिसका मुंह था उधर भाग रहा था, और वो ऑन टॉप ऑफ दिस ये एक अफवाह फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो इस पे तो सहाबा के जो रहे सहे होश वो हवास थे वो भी चले गए, और कई लोगों ने तो हिम्मत ही हार दी। उन्होंने कहा बस ठीक है फिर, अब क्या रह गया, अब कोई लड़ने का फायदा नहीं। दूसरों ने कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मिशन के लिए अपनी जान दी है, तो फिर बस हम भी लड़के हम भी खत्म हो जाते हैं। तो यानी बस एक ऐसी सिचुएशन हो गई जो कि बिल्कुल उससे ऑपोजिट थी जो कि मुसलमानों को फतह हुई थी, और उस वक्त बिल्कुल एक नक्शा अलग था, अब एक और हो गया। और इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सिर्फ 10 लोग रह गए थे, नबी अलैहिस्सलाम खुद भी जख्मी हो गए थे। तो उस वक्त मुसलमान फिर ओहद पहाड़ पे चढ़ गए थे, और ये कहा जाता है कि इस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद, उस वक्त तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये चाहा कि मुसलमानों के पीछे जाया जाए ओहद पे और इनको जाके खत्म कर दिया जाए। लेकिन अबू सुफियान जो कि बड़ा ही अकलमंद आदमी था, उसने कहा नहीं, वो भी उस वक्त कुफार की जो लश्कर था उसका लीडर था, उसने कहा नहीं, ये लोग ऊपर हैं बुलंदी पे हैं, हम नीचे से जब जाएंगे तो ये हमें ऊपर से मारेंगे, तो हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अब हम चलते हैं। हमारा काम ये था इनसे बदला लेना बदर का, वो हमने ले लिया। और मुशरिकीन तो ये खैर इरादा रखते ही थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें और ये काम ही खत्म कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे उनके हौसले पस्त किए कि वो नहीं उस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच सके सिवाय चंद एक लोगों के, और वो वहां तक पहुंचे थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। इसकी बहरहाल काफी डिटेल आप देख सकते हैं सीरत की किताब में भी, और उसको आप एक दफा पढ़ लीजिएगा और ज्यादा आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब हम देखते हैं इसको तफसीर को इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखने से पहले हम ना सिर्फ बदर का देखेंगे कि उसमें क्या हुआ, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि जब शिकस्त होती है, जब अनएक्सपेक्टेड हालात हो जाते हैं, या जब ऐसी कोई मौका होता है कि जिसमें आप जीती हुई बाजी हार जाते हैं, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो कुछ का कुछ हो गया, आपको तो सब अच्छा ही नजर आ रहा था कि सब ठीक हो गया, लेकिन जिंदगी में बहुत दफा ऐसे होता है कि आपने कुछ समझा और हो कुछ और गया, आपको एक जीती हुई बाजी हारनी पड़ जाती है, उस वक्त कैसे आपने रिएक्ट करना है, उस वक्त कैसे आपने हौसला रखना है। और अल्लाह ताला चाहते तो इस जंग के जो मुसलमानों की कमजोरियां थी उनको हाईलाइट करके 1 2 3 4 5 ऐसे बता दिया जाता, एक लिस्ट दे दी जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से आप देखेंगे आयात में मुसलमानों को तसल्ली दी है, उनका मोराल अप किया है, उनको हौसला दिलाया है, उनको दोबारा खड़ा किया है, और साथ साथ उनकी कमजोरियों की भी इसलाह कर दी है। कि देखो ये चीजें थी तुम्हारे अंदर, इसकी वजह से ये हुआ। आप खुद भी सोचें कि एक अल्लाह का रसूल साथ है, मुसलमान पहले 313 थे, उस वक्त जीत गए थे, तो अब क्या मुश्किल होनी थी? अब तो कोई नहीं मुश्किल होनी थी। और फिर जब हक पे है तो जीत तो हमारी ही होनी चाहिए। दूसरे को तो कुफार है, वो तो अल्लाह को नहीं मानते, इनको हारना ही चाहिए। लेकिन जब ये सारा कुछ हो गया, शिकस्त तो नहीं कह सकते, इसलिए कि वाजे शिकस्त तो नहीं हुई थी, उनको भी वाजे फतह नहीं मिली थी। देखें कि वो लोग जब वापस गए तो हमराउल असद एक जगह आती है, जहां से अगर अभी भी आप जाएंगे तो जहां से मक्का का ये जो मक्का को जाने के लिए एक पुराना राउट है वो और नया राउट अलग अलग होते हैं, वहां पे एक मैदान है हमराउल असद, वहां पे इन काफरों ने यहाँ पे ठहर गए जाके, और उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, हम क्यों आ गए, ना तो हमने उनके कुछ उनको खत्म किया, उनको मिटाया नहीं, ना हम मदीना तक गए, ना हमने कुछ भी नहीं किया, हम ऐसे ही आ गए और उनको छोड़ के आ गए, तो एटलीस्ट हम कुछ तो उनका ऐसा नुकसान करते, तो ये हमने क्या किया। तो अब उन्होंने सोचा कि हम वापस जाते हैं, ने कहा ये तो कोई जीत ना हुई कि हम आ गए हैं वहां से, वो अभी तक मैदान जंग में ही थे, वो तो नहीं भागे, वो तो मदीना नहीं चले गए थे, वो तो वहीं थे, तो ये हमने किया क्या। तब उनको ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि हम जाते हैं वापिस, से पता चला कि ऐसी वाजे फतह नहीं उनको हासिल हो गई थी। मगर जो मुसलमानों को इस कदर एक, आप कुछ सोचिए ना, एक धचका लगा है, एक हजीमत, एक जिल्लत सी उठानी पड़ी। और आप देखेंगे आगे आयतों में भी जब ये सारा पढ़ेंगे ना, आपको इतना लगेगा ये क्लोज है टू आवर लाइफ, इसलिए कि फिर ये जो मुनाफिकीन थे उनको भी बड़ा अच्छा मौका मिल गया, उन्होंने वो बातें बनाई, वो प्रोपोगंडा किया, वो कुछ किया। हाँ जी, अगर ये सच्चे रसूल होते और इतना ही सारा कुछ ठीक होता तो ये जीत ना जाते, ये क्या बात हुई। देखे ना, एक करने की बात है कि जो कई लोगों को हिला सकती है। तो उस वक्त और नबी अलैहिस्सलाम खुद जख्मी भी हो गए, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, कुछ लोग कुछ काफिर वहां तक पहुंच गए थे। तो ऐसे में आप देखें कि अंदर से कई मुसलमान हिल गए थे, और फिर 70 शहीद हो गए। तो अब ये भी एक वो था कि हमारा इतना नुकसान हो गया और हम तो जीते हुए थे। देखिए, एक इंसान हार जाए ना वैसे तो उतना नहीं गम होता जितना कि जीती हुई बाजी को हारना, कि हो क्या गया हमारे साथ। तो वो जो एक ट्रॉमेटाइज हो गए, वो जो एक उनके ऊपर नफसियाती तौर पे असरात हुए, वो सारे किस तरह से इन आयात में उनको जाहिल किया गया है, किस तरह से तसल्ली दी गई, किस तरह से उनका दिल बधाया गया है। तो हमारी भी जिंदगी में बहुत दफा ऐसी शिकस्त आती है, बहुत दफा ऐसे मामलात आते हैं, और हमारे लिए बड़ा अच्छा सबक है इन आयतों में, खास तौर पे ऐसे जिंदगी के मामला। देखें, जंगें तो इस वक्त नहीं हो रही कोई ऐसी, लेकिन हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स में कितने महाज हैं जिनमें हम हिम्मत हार बैठते हैं, हमें शिकस्त हो जाती है। मसलन है, डाइवोर्स हो गई, सब अच्छा चल रहा था, सब सब दिख रहा था कि बड़ा अच्छा है, कुछ इसमें मसला ही नहीं, और वो जीती हुई बाजी हार गए। कोई बीमारी ऐसी आ गई, अच्छे भले ठीक थे, क्या हो गया एकदम हौसला हार दिया। बच्चों को कोई नाकामी आ गई, उस वक्त कैसे हौसला करना है, कैसे खड़े होना है दोबारा। देखिए, शिकस्त के बाद असल चीज ये होती है कि इंसान दोबारा खड़ा होने का हौसला रखे, और अगर वो ये हौसला नहीं रखता तो वो गया, बस खत्म। तो हमें बहुत प्यारे लेसन्स मिलते हैं इन आयात में, ये करना क्या है, चलना क्या है, कैसे है। जिन आयात ने उन लोगों को हौसले दिए, वही हमारे लिए हौसले हैं, और क्या हम सबक लेते हैं इनसे। वह ईद गदौता, और जब सुबह सवेरे निकले तुम मिन अहली का, अपने घर वालों से। यहां तक ही पढ़ें, देखें कुरान पाक का कोई भी लफ्ज जायद नहीं है, कोई भी बात ऐसे नहीं कि फालतू ही ऐसे बता दी गई हो। ये भी हो सकता था कि यही बता दिया जाता, जंग शुरू हुई और ऐसे हुआ, नहीं। जब तुम निकले, ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले हैं, वो टाइम कौन सा था, सुबह सवेरे का वक्त, ये नहीं कि आराम से 10 बजे सो के उठें क्योंकि कल बहुत बड़ा मार्ग है, तो फिर जरा अच्छी तरह रेस्ट किया जाए, फिर गले मिलें सबसे, फिर रोएं धोएं, फिर अल्लाह हाफिज करें, फिर ये करें, फिर नहीं, सुबह सवेरे अपने काम के लिए। इससे पता चलता है कि मोमिन अपना काम शुरू करता है सुबह सवेरे। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दे दे, तो सुबह के वक्त में बरकत होती है। और फिर मीन अहली का, अपने घर वालों से, यानी उनके भी घर वाले थे, ऐसे नहीं था कि उनको कोई परवाह ही नहीं है, बस उन्होंने तो अपने जाने त्याग दी हैं, अब बस उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, उनके भी घर वाले थे, उनके भी प्यारे थे, उनको भी वो अजीज थे, जैसे आज हमें हमारे प्यारे अजीज होते हैं। लेकिन जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आता है तो प्यारों को भी छोड़ना पड़ता है बाज दफा, वो अपने घर वालों में से निकले ना, और ये मुश्किल काम होता है। तो बवी उल मुमिनीन, मुतय्यन कर रहे थे मोमिनों को, इससे क्या पता चला, बिठा रहे थे मोमिनों को, मकाइदा लिल किताल, उनके ठिकानों पे जंग के लिए। इससे हमें ये बहुत बड़ी बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉपर प्लानिंग की, उनको उनकी जगहों पर बिठाया। ऐसे नहीं कि चलो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं हम, जहां पे भी कोई बैठ जाए इससे क्या फर्क पड़ता है, असल तो अल्लाह ने ही देना है ना, तो कोई बात नहीं है। आप देखेंगे आगे कि काफरों की फौज के अंदर ये डिसिप्लिन नहीं था, उनमें जोश था, गुस्सा था, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ किस तरह से मुसलमानों की प्लेसमेंट की। क्योंकि बाज दफा जब अल्लाह के लिए काम कर रहे होते तो वह ये सोचते हैं नहीं तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या है? हम कहीं पे भी कर लें, कुछ भी कर लेंगे, तो फतह तो अल्लाह ने देनी है, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, प्लानिंग जरूरी है। तो मुसलमान प्लानिंग के साथ चलता है, वो ये नहीं होता कि बस जोश और जज्बा है और प्लानिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ किसको प्लेस किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसमें मैंने आपको बताया जबले रमाद पे इन 50 लोगों को, क्योंकि यही बाद में एक तरह से मुसलमानों के लिए जो सेट बैक हुआ उसकी वजह बने। इसलिए बहुत जरूरी है कि पता हो कि कहाँ पे मुसलमान थे। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला भी और जानने वाला भी है। यानी अल्लाह उस वक्त सुन रहा था जो तुम्हारी बातें हो रही थी, जो तुम्हारी डिस्कशन हो रही थी, और वो जानने वाला भी है। अल्लाह ताला फरमाते ना, वहुल्लदी यतवफ्फाकुम बिल्लैली वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, अल्लाह वो है जो रातों को तुम्हें सुला देता है, मौत दे देता है, तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है, और वो ये देखता है, वो ये जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, भाग दौड़ चलना फिरना इधर उधर काम, ये जो भी तुम कर रहे हो वो अल्लाह की नजरों में है, अल्लाह वो भी जानता है। किसी वक्त भी तुम उसकी नजर से ओझल नहीं हो, उसको इल्म है जो तुम्हारे दिलों के अंदर उस वक्त बातें हो रही थी, जो दुआएं थी मुसलमानों की, जो आपस में डिस्कशन थी। इद हम्मत तौइफतानि मिनकुम अन तफशला, जब इरादा किया दो ग्रोहों ने तुम में से कि वो बुजदिली दिखाएं। अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीर हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको प्लेस कर दिया। अब हुआ क्या, जिस वक्त के ये अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेकर वापस पलट गया, तो उस वक्त कुछ मुसलमानों के हौसले भी पस्त हो गए, और उन्होंने भी ये चाहा कि हम भी वापस चले जाएं। जिनमें एक था औस का एक सब ट्राइब बनु हारिसा, और खजरज के अंदर एक सब ट्राइब थी बनु सलेमा। ये दो ग्रो ऐसे थे, तौइफतान कहा ना, दो ग्रो ऐसे थे जिन्होंने इरादा किया कि हम भी पलट जाते हैं, हम भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो देखा कि वो चले गए वापस, तो अब क्या लड़ने का फायदा, अब उनके भी हौसले पस्त होने लगे कि देखो अब तो हम जीत ही नहीं सकेंगे। वल्लाहु वलीयुहुमा, अल्लाह उनका मददगार था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको पलटने से रोक दिया, अल्लाह ताला ने उनके हौसले बढ़ा दिए, मुसलमानों ने उनको समझाया बुझाया, अल्लाह ताला ने उनकी दिल को मजबूत किया और वो वापस नहीं पलटे, वरना उन्होंने इरादा कर लिया था कि हम भी चले जाएं, और अगर वो भी चले जाते तो फिर देखो एक और मुसलमानों के लिए सेटबैक हो जाता। तो अभी जंग नहीं शुरू हुई, اس وقت ہی یہ حال تھا کہ مسلمانوں میں ہی ایسی چیز ہوئی جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتی تھی. تو انہوں نے کم ہمتی دکھائی, کمزوری دکھائی, لیکن اللہ کا فضل تھا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ واللہ ولیہما, یعنی اللہ ان کا ولی تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق نہیں تھے, منافق نہیں تھے, لیکن کچھ دیر کے لیے ان کے اندر کمزوری آئی. انہوں نے دیکھا ہماری تو تعداد کم رہ گئی ہے, ہمارے پاس سامان کم ہے, ہم اس طرح سے ان کے میچ کے ہیں ہی نہیں ہیں. تو ان کے اندر کم ہمتی ہوئی, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا. لیکن اللہ ان کا ولی تھا. اور یہ بات بعد میں بھی یہ دونوں جو قبیلے تھے, بنو سلمہ اور بنو حارثہ, ان کے جو لوگ تھے یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر یہ آتاب میں یہ آیت آئی ہے, لیکن وہ اس پہ فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا واللہ ولیہما, یہ بھی تو بشارت ہمارے لیے. یعنی ہم, اس کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ طائفتانی منکم, تم میں سے ایک رو, یعنی اس کا مطلب کہ ہم بھی تم میں سے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نہیں کر دیا کہ ایکسپیل کر دیا کہ اب بس ختم, تمہارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم نے یہ کیا, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیہما, اللہ ان کا ولی تھا. اس سے کیا پتا چلا؟ اور ایک پہلے بات اور پڑھ لیتے ہیں, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ویک مومنٹس آتے ہیں لوگوں پہ, ٹھیک ہے, ایمان والے کی زندگی میں بھی ویک مومنٹس آ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی پرفیکٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں, حالانکہ یہ ایمان والے تھے, لیکن ایک وقت ان کے اندر بھی ایسا آیا کہ ہل گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی وجہ سے, ان کے اس کام کرنے کی وجہ سے ڈس اون نہیں کر دیا, یہ بس ختم, بلیک لسٹ ہو گئے. جیسے ہم کرتے ہیں نا, یہ کسی کی ساری زندگی کے ہمارے ساتھ بھلائی ہوتی ہے, مگر کسی نے ایک دن کوئی ہمارے ساتھ کچھ ایسا برائی کر دی, کچھ ایسی بات کر دی, سارا پچھلا ہم بھول جاتے ہیں اور پھر اس کو معاف نہیں کرتے, بس اس کو ہمیشہ کے لیے بس ختم. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ویک مومنٹس آ سکتے ہیں لوگوں کی زندگی میں. انسانوں کو انسان ہی سمجھو, ان کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں, ان کمزوریوں کو اگنور کریں اور ان کی خوبیوں کی طرف توجہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا, اچھا تم نے تو ارادہ کر لیا تھا نا, جاؤ چلے جاؤ, اب تمہیں ہم نے رکھنا ہی نہیں ساتھ. ہمیں پتا تھا کہ یہ ہیں مخلص لوگ, باوجود اس کے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو لیے کیا فرمایا, اللہ ان کا ولی ہے. کیونکہ اللہ کو پتا ہے ان کے اندر اخلاص ہے, ان کی نیت سچی ہے, یہ صحیح مسلمان ہے, مگر کمزوری آ سکتی ہے. ہم کیوں نہیں معاف کر دیتے کسی کو یہ سوچ کے؟ اور کوئی دین والے سے کوئی چیز ہو جائے پھر تو دیکھیں ذرا کہ کیا ہم کرتے ہیں. دیکھو انہوں نے ایسی کر دیا, یہ تو بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں, یہ تو بڑے ایسے ہیں, تو اپنے آپ کو بڑا نیک کہتے ہیں. نہیں, وہ صحابہ تھے. اس کا مطلب غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کیا کرایا اس کا ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ڈس اون نہیں کیا تو اور کوئی کیسے کر سکتا؟ تو جب پتا ہو کہ کوئی مخلص ہے مگر اس سے غلطی ہو گئی ہے آج کے دن, تو پھر اس کو اگنور کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ہمیں لیسن اس جگہ سے ملتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو تو بس اب یہ, اس کو تو اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے, اس کو تو کچھ نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ شیطان کی بات میں کوئی آ گیا, یا کوئی اس وقت اس کی اندر کمزوری آ گئی, فتنے میں پڑ گیا. تو انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے, ان کو سپیس دینی چاہیے, ان کی غلطیوں کو اگنور کرنا چاہیے, تبھی زندگی چل سکتی ہے. اور اگر ہر ایک عیب ہی پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں نا, اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. آپ کو کہیں پرفیکشن نہیں ملے گی, چاہے آپ نے دوستی کرنی ہو کسی سے, چاہے آپ نے رشتہ داری بنانی ہو کسی سے, نئی رشتہ داریاں بنانی ہو, کوئی تعلقات بنانے ہو, کہیں پرفیکشن نہیں ہے. ہر جگہ میں آپ دیکھیں گے, انلیس کہ کوئی بہت ہی کسی کے بڑی ایسی بات ہو, ادروائز اس کی کوئی छोटी छोटी बातों को पकड़ के, और यहाँ पे ये छोटी बात नहीं थी, इस वक्त मुसलमानों को बहुत जरूरत थी कि ऐसे लोग मिल जाएं जिन जो साथ उनके मिलके लड़ें, जबकि एक बंदा 300 लोग लेके वापस जा चुका है। लेकिन उस वक्त भी पता है ना कि मैदाने जंग से भागना कबीरा गुनाह है, लेकिन ऐसे करने वालों को भी जिन्होंने ये इरादा किया, इस चीज को छोड़ दिया गया, जाने दिया गया। तो सच्चे मोमिन में भी बाज दफा बुजदिली आ सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुजदिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। पूछा गया मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं, झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ लोगों को देख के बाकी भी लोग उस वक्त उस स्पर ऑफ द मोमेंट में एक जज्बाती हो जाते हैं और वो भी कुछ ऐसा कदम उठाने का सोच लेते हैं, मगर वो पलटे नहीं थे, अल्लाह ने उनका दिल जमा दिया था, क्योंकि उनमें मुनाफ़कत नहीं थी ना। तो अल्लाह ताला देखता है अगर आप अंदर से मुखलिस है ना, अंदर से इंसान को मुखलिस होना चाहिए, तो फिर उससे अगर कोई गलती भी हो जाती है अल्लाह थाम लेता है। और मोमिनों को चाहिए, आगे नसीहत क्या की गई कि जो मोमिन होते हैं वो अल्लाह पे ही भरोसा करते हैं, और उनको चाहिए भी कि अल्लाह पे ही भरोसा करें। तवक्कुल क्या होता है? ये तवक्कुल का जानना इन हालात में जो आजकल हमारे ऊपर चल रहे हैं, इनमें तवक्कुल जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, वो जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, हमारा अल्लाह के ऊपर भरोसा है बस, इतना भी क्या डरना, कोई डरने की जरूरत नहीं, बस हमारा अल्लाह पे भरोसा है। वो कह रहे हैं हम कुछ भी करते जा रहे हैं, हमें नहीं परवाह, हम वैसे ही नॉर्मल ही रह रहे हैं। हालांकि तवक्कुल ये नहीं होता। तवक्कुल की सेवाओं के अफलाम से तवक्कुल होता क्या है? तवक्कुल ये होता है कि इंसान जब अपनी सारी कोशिशें कर लेता है, सारे असबाब इख्तियार कर लेता है, सारी एहतियातें कर लेता है, सारी अपनी प्लानिंग कर लेता है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है, मैं क्यों जीरे पहनू, क्या मैं दुश्मन से डरता हूं, मौत आनी होगी तो आ जाएगी, जैसे आजकल हमने कहा ना मौत आनी होगी तो कोरोना से क्या, हमने कोरोना कोरोना कुछ नहीं है, बस कोई कह रहा है कि हम तो मुर्दों को भी नला रहे हैं, कोई कह रहा है जी हम तो हर जगह जा रहे हैं, कोई कह रहा है जी हम तो ये नहीं डिस्टेंसिंग करते, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि हमारा तो तवक्कुल अल्लाह पर है। गलत कह रहे हो आप, आपने तवक्कुल को समझा नहीं। फिर तवक्कुल ये नहीं होता, तवक्कुल अल्लाह पे उस वक्त होता है जब आप अपना ऊंट बांध दें, उसके बाद तवक्कल करें, ये हदीस में आता है। यानी आपने अपनी पूरी एहतियात करनी है, आपने असबाब इख्तियार करने हैं, और उसके बाद इस असबाब इख्तियार करने के बाद अब आपने क्या कहना है कि ए अल्लाह ये तो असबाब है जो मैंने इख्तियार कर लिए, मगर ये किसी काम के नहीं है, अगर तेरी मदद ना हो, मुझे तेरी मदद चाहिए, मेरी तो सिर्फ कोशिश है, ए अल्लाह जो इसका नतीजा है वो तूने निकालना है, ए अल्लाह बचाना तूने है, तेरे हाथ में है इसका जो भी आउटकम है, ये नहीं कि खुद कुछ भी नहीं करना, खुद कोई एहतियात नहीं, खुद कोई सबब नहीं इख्तियार करना, बस ये जी अल्लाह ताला का काम है ना, वो खुद ही कराएगा, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। नहीं, जैसे एक इंसान होता है ना, वकील को अपना मुकदमा देता है ना, तो कोशिश के बाद अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देना कि अब मेरे मैंने जितना करना था ना कोशिश, वो मैंने कर ली है, अब मैं अपनी कोशिश के बावजूद इस काबिल नहीं समझता कि मेरी कोशिशें की वजह से मेरी जीत हो जाएगी या मेरी कोशिशों की वजह से सब ठीक रहेगा, मेरी कोशिशों से कुछ नहीं होता, मेरी कोशिशें अल्लाह की मदद की मोहताज हैं, अल्लाह मेरी कोशिशों के अंदर रंग लाने वाला तू है। क्या तो ये बात अल्लाह ताला को फिर पसंद आती है कि इंसान अपने आप को अल्लाह की जात के ऊपर इतना भरोसा करता है, अपने आप को उसके ऊपर गिरा देता है कि मेरे वसाइल, ये मेरी सारी जो मादी चीजें हैं, या अल्लाह ये कुछ नहीं है, अपनी कमजोरी का इंसान इतराफ करता है कि सब कुछ करने के बावजूद है अल्लाह मैं तेरी तरफ देखता हूं, तेरी सुपुर्द करता हूं अपने मामले को, ये होता है तवक्कुल। مسلمان اسلحہ بھی تیار کرتا ہے، مسلمان جنگ کی اسٹریٹجیز بھی کرے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کیوں آپ نے زیریں پہنی اور کیوں آپ نے یہ تدبیریں کی کہ ان کو ان کی جگہ پہ سیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب جب یہاں پہ آ گیا نا کہ اس سے ہمیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صف بندی بھی کرائی، آپ نے ان کو پراپر جگہوں پہ پلیسمنٹ بھی کی، آپ نے اپنے بھی جو بھی آپ کے پاس وسائل تھے اس کے مطابق زیرے بھی پہنی. تو کیا سب چیزوں کی ضرورت تھی اگر توکل یہی تھا کہ بس اللہ کے اوپر بھروسہ، چلو نکلو بس، جہاں پہ بھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہو جائے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنگ اسے تھوڑی جیتی جانی ہے کہ ہم پلاننگ کریں، ہماری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں پلاننگ میں نے کر لی ہے لیکن میری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوگا یا اللہ جب تک کہ تیری مدد نہ آ جائے. کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ یہ چیز اتنی مس انڈرسٹینڈ کی جا رہی ہے آج کل. توکل توکل نہیں جی، ہمارا تو توکل ہے. یہ کون سا توکل ہے آپ کا؟ کوئی آپ نے کوشش نہیں کرنی، کوئی آپ نے احتیاط نہیں کرنی، کوئی آپ نے سبب نہیں اختیار کرنا، جی توکل توکل ہے. اب تو توکل کو بھی آپ غلط رنگ دے رہے ہیں نا. تو یہ ہوتا ہے توکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ورنہ کیا جنگی ساز و سامان کے بغیر ہی نکل آتے، کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اور صبح سویرے بھی نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ ساری پلاننگ کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر سیکھنی ہوتی ہیں نا باتیں تو سیرت سے سیکھا کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ پریکٹیکلی یہ چیزیں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. ورنہ تو ہم پرس پڑھ لیں توکل توکل، چلیں جی ہم توکل ہی کر رہے ہیں نا. جس نے جو بھی توکل کا معنی سمجھا آج کل، وہ ایسا ہی توکل کر رہا. تو اس میں اپنی بھاگ دوڑ ضروری ہے، اپنی محنت اور تیاری ضروری ہے، اور اس کے بعد اے اللہ میری بھاگ دوڑ کوئی چیز نہیں جب تک تیری مدد نہ آ جائے، جب تک تیرا ساتھ نہ ہو تو میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ اب تو میری مدد کرے گا. یہ ہو گیا توکل. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ توکل کی بات کیوں آئی؟ کہ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی کے اوپر بھروسہ کرتے، انہوں نے یہ دیکھا 300 لوگ واپس چلے گئے نا، اب ہم نے کہاں جیتنا، اب خود بھی مورائل ڈاؤن ہو گیا. اب دیکھیں اب ایک فوج کے اندر سے ہی اتنے لوگ نکل کے چلے جائیں، 30% لوگ نکل کے چلے جائیں تو کیا ان کی پریشانی ہوگی؟ اس وقت چاہیے کیا تھا کہ یہ کہتے کہ ہم وسائل سے تو نہیں جیت سکتے، ہم ساز و سامان سے تو نہیں جیت سکتے، اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے. اگر وہ چلے بھی گئے تو ان کے ہونے سے تو فتح نہیں ہو جانی تھی، تب بھی اللہ نے ہی دینی تھی، اور وہ نہیں بھی ہیں تو تب بھی اللہ نے ہی دینی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ زندگیوں میں کتنا ضروری ہے نا توکل، ہم کی کوششیں کریں اور اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑیں. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر لیتا نا تو اس کے دل کو چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس کے اندر کہ اللہ ہے نا، میں نے تو کوشش کر کے دیکھ لی، اب اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ جتنا میرے بس میں تھا انسانی طور پہ آپ اپنی طرف سے پورا کر لیتے ہیں، میں نے اتنا کر لیا، اب آگے اللہ تیری طرف میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو کتنی بڑی تسلی دیتا ہے، اور یہ کسی کافر کے پاس نہیں ہے، توکل صرف مومن کرتا ہے. دیکھیں کہا گیا نا بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے، کیونکہ ایمان والے سے ہی صرف ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ توکل کرے. آپ نے اپنا علاج کرایا پر شفا کس کے ہاتھ میں؟ آپ ڈاکٹر کے بھی گئے، ہسپتالوں میں بھی رہے، دوائیاں بھی لیں، سب ٹریٹمنٹ ہو گیا، لیکن شفا اس ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے، شفا تو اللہ تو نے دینی ہے. یہ ہوتا ہے توکل. اب گھر بیٹھے رہے، نہیں کچھ بھی نہیں میں نے کرنا، بس میرا اللہ پہ توکل ہے، یہ نہیں بات.